الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، هذا التحميد رحمة الله عليك ملفوظات مسلم. فرمایا کہ روح اعتکاف انتظار صلات ہی ہے، روح اعتکاف انتظار صلات ہے، نماز کا انتظار ہے. اصل جو آدمی انتظار صلات میں ہوتا ہے وہ صلات میں ہی ہوتا ہے، مادام انتظرہا، جب تک انتظار کرتا رہتا ہے اس وقت تک نماز ہی میں رہتا ہے. معتکف کو ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ نماز باجماعت ہی کی پابندی کے لیے معتکف ہوا ہے. اسی لیے اعتکاف کے لیے مسجد جماعت شرط ہے. جس مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو وہاں اعتکاف جائز نہیں. فرمایا کہ حاجی صاحب دو شخص کو ہجرت سے منع فرماتے تھے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کو حاجی صاحب بولتے ہیں. حاجی صاحب دو شخص کو ہجرت، پہلے زمانے میں یہاں سے لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چلے جاتے تھے. بہت علماء ہندوستان سے گئے، پاکستان سے گئے، عوام بھی گئی. پہلے بہت ہی مفلس و غریبی کی حالت میں تھا مکہ مدینہ ظاہری اعتبار سے، ایسی دولت کی ریل پیل نہیں تھی، صرف عبادت کی ہی جگہ تھی ایک اعتبار سے. تو اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو اس کو، اس میں سے دو قسم کے لوگوں کو حاجی صاحب منع کرتے تھے کہ تم مت آؤ. ایک تو کڑے دنیا دار کو، کیونکہ یہ لوگ مکے کے حقوق کیا ادا کریں گے. آدمی جس جگہ جائے اس کا حق ادا کرنا پڑتا ہے. دوسرے علماء اور مقتدا کو، کیونکہ ان کی ہجرت سے ہندوستان بم پولیس ہو جائے گا، علماء نہیں رہیں گے. بم پولیس بیت الخلاء کو بولتے ہیں، باتھ روم کو بولتے ہیں، ہندوستان باتھ روم ہو جائے گا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ دل بمکہ و جسم بہندوستان، بہ ازاں کے جسم بمکہ و دل بہندوستان. دل مکے میں اور جسم انسان کا ہندوستان میں یا امریکہ میں. بہتر ہے اس بات سے کہ جسم تو مکے میں ہو اور دل ہندوستان میں ہو یا امریکہ میں ہو. فرمایا کہ شیطان کے گمراہ کرنے کو کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا. شیطان کے گمراہ کرنے کو کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا بلکہ یہی نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا، ورنہ وہ تو عزازیل تھا، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزازیل، ایسا، ورنہ وہ تو عزازیل تھا. پس نفس کا مغلوب کرنا کفار کے مغلوب کرنے سے اہم ہے، اسی واسطے مجاہد نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے. فرمایا کہ جہاں حق متعین ہو تو اہل باطل کو اتفاق پر مجبور کرنا چاہیے کہ تم اہل حق سے نزاع نہ کرو. جب حق متعین ہوتا ہے تو اہل باطل کو مجبور کیا جاتا ہے، دونوں کو مجبور نہیں کیا جاتا تم لڑو مت آپس میں، دونوں کو نصیحت نہیں کی جاتی. جو حق ہے اس کو نصیحت کرنے کا کیا ہے، تو تم اس سے مل کے رہو، یہ تو کوئی تکی نہیں بنتا. اہل باطل سے تم مل کے رہو، اہل باطل کو مجبور کیا جائے گا کہ تم حق کے ساتھ میں ملو. یہ بہت جگہوں پہ چلتی ہے یہ چیز. اب شیعہ سنی ہے مثال کے طور پر، ارے بھائی شیعہ سنی کیا ہے، شیعہ سنی کا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی، وہ بھی وہی، وہ بھی وہی، کیسا رہتا. ان کا مذہب ہی شروع ہوتا تمہاری اماں کو گالی دینے سے. مذہب کی سٹارٹنگ وہیں سے ہے. جب تک حضرت عائشہ کو برا نہیں بولے رضی اللہ عنہا، ام المومنین کو، ان کا مذہب ہی نہیں سٹارٹ ہوتا. ابوبکر عمر کو جب تک نہیں برا بولے ان کا مذہب ہی نہیں شروع ہوتا. تو آپ کیسے ملیں گے ان کے ساتھ؟ ملتے ہی تمہاری اماں کو ایسا، تمہارے بابا کیسا، کیسے ملو گے؟ تو نہیں ہو سکتا. ہو حق کے ساتھ میں باطل کو نہیں، حق کو باطل کے ساتھ میں ملنا نہیں ہوتا، باطل کو مجبور کرنا ہوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ میں آ کے ملے. یہ بڑی مصیبت امریکہ میں ہے کہ بھائی مسلمانوں میں جو ہے نا اختلاف نہ ہو جائے، پھوٹ نہ پڑ جائے، مل کے رہنا چاہیے، لہذا ان کو بھی ساتھ لینا چاہیے. اب ان کو کیسے ساتھ لو گے آپ؟ ایک آدمی نماز پڑھاتا ہے، ساکس پہ مسا کرتا ہے، تمہارے حساب سے اس کیا وضو ہی نہیں ہوا، تمہاری فقہ کے اعتبار سے اس کا وضو ہی نہیں ہوا، اب وہ نماز پڑھاتا ہے، اب اس کے ساتھ کیسے مل کے رہو گے، کیسے نماز پڑھو گے اس کے پیچھے؟ نہیں، مسلمانوں میں انتشار ہوں گا، اس کو مجبور کرنا چاہیے کہ بھائی تم کو اگر نماز پڑھانا ہے تو پیدا ہو کے پڑھاؤ، نہیں تو مت پڑھاؤ، نہیں پڑھا سکتے تم. ملنے کی تو صورت یہ ہے، اپنے دین کو چھوڑا نہیں جا سکتا نا. پردے کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، حلال حرام کا امتیاز نہیں ہے، سب قسم کا کھانا کھا رہے ہیں، کیسے ملا کے رہیں گے سب کو؟ ارے نہیں بھائی، انتشار ہوں گا، انہیں جہاں سے بھی کھلا رہا سب مل کے کھاؤ بھائی، آدھا باتھ روم میں سے ملا کے لا کے دے دیا، آدھا اپنے پاس سے ہے تو بھی کھاؤ بھائی، انتشار ہوتا نہیں تو. یہ کے بعد کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے شاسروں. انتشار نہیں کرنا اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق پہ جمے رہنا، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ میں آ کے جڑ رہا ہے تو اس کو جوڑ لینا، آپ باطل کے ساتھ میں نہیں جا کے جڑنا کسی بھی چیز میں، روزہ رکھنے کے معاملے میں، رمضان شروع کرنے کے معاملے میں، عید کرنے کے معاملے میں، جمعہ پڑھنے کے معاملے میں، اہل کتاب سے شادی کرنے کے معاملے میں، اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کے معاملے میں، مکس گیدرنگ کے معاملے میں، پردے بے پردگی کے معاملے میں، کسی بھی چیز میں باطل کے ساتھ نہیں ملنا کبھی بھی. چاہے آپ کو اکیلے نماز پڑھنا پڑے اپنی بستی میں، الگ روزہ رکھنا پڑے، عید کی نماز مت پڑھو، آپ اکیلے رہیں گے تو عید کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ نہیں، نماز ہی نہیں ہے جواب کے ذمے، مت پڑھو، خالی شرخنما بنا کے کہو. جب تک جو ہے نا حق پر آدمی جمے گا نہیں، چاہے وہ اکیلا ہو، حق جمے گا نہیں. اصل میں حق کا خارجی وجود جو ہے نا وہ آدمی کی لائف ہوتی ہے. ایک حق ہے لفظوں میں، کتابوں میں، ایک حق ہوتا ہے باہر فزیکل میں، خارج میں. حق خارج میں کیا ہے؟ وہ آدمی کی زندگی. تو وہ ایک بھی رہے تو اس کو کھڑے رہنا پڑتا ہے. جیسے پورے 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 میدان کے اندر ایک درخت ہے صحیح قسم کا، وہ سایہ دے گا، وہ پھل دے گا. وہ پورے انبیاء علیہ السلام شروعات ایسے ہی کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام جب کام شروع کرتے تھے کون تھا ان کے ساتھ؟ اکیلے ہی کھڑے رہے. نوح علیہ السلام کتنے زمانے تک اکیلے کھڑے رہے. بعض پیغمبر ایسے گزرے ہیں کہ پوری زندگی ایک بھی ان کا کوئی مسلمان نہیں ہوا، ان کے ہاتھ پہ ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. وہ ناکام نہیں ہوئے چونکہ ان کا کام جو تھا اور ڈیوٹی جو تھی وہ انہوں نے انجام دی. مگر وہ لوگ مان نہیں رہنا، انتشار ہو رہا نا، بلکہ وہ اکیلے وہ ان کے ساتھ لوڑے تھوڑی ہو جا سکتے تھے، نہیں ہوئے کبھی بھی. تو یہ پہچاننے کی وہ بتا رہے ہیں حضرت، فرمایا جہاں حق متعین ہو اہل باطل کو اتفاق پر مجبور کرنا چاہیے. نصیحت کرنے میں بھی ہمیشہ یہی پہلو رہنا، ان کو بولنا بھائی تم ان کے ساتھ آ کے ملو. فرمایا کہ زندگی کے لطف کا مدار، مزیدار زندگی، انجوائبل لائف، لطف زندگانی کا مدار مال پر نہیں بلکہ نشاط طبیعت اور نشاط روح پر ہے. طبیعت کی نشاط، خوشی، کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہونا، اسٹریس نہیں ہونا، تفکرات نہیں گھیرنا، اس پر ہے مزیدار زندگی کا مدار. اور روحانی نشاط کا مدار، روح کی نشاط پر زندگی کا مزہ ہے. اور روح کی نشاط کا مدار دین پر اور اللہ کے تعلق پر ہے. اللہ کے ساتھ تعلق صحیح ہے، آپ کو خوشی رہے گی، تسلی رہے گی. اللہ کے ساتھ تعلق صحیح نہیں ہے، خوشی نہیں رہے گی. بس دین کے ساتھ چاہے دنیا کم ہوگی مگر پر لطف ہوگی، اور بد دین کے لیے خود دنیا بے لطف ہے. کسی دنیا دار کو اگر لطف میں دیکھو تو وہ یا تو اس کے دین کا اثر ہے، اس کے حصہ ہے دین کا، جتنا حصہ اس کے پاس میں دین کا ہے، یا دیکھنے والے کو اس کی ظاہری حالت سے دھوکہ ہو گیا ہے. اگر اندرونی حالت کی تفتیش کی جائے گی تو پریشانی ہی پریشانی ثابت ہوگی، اس نے حقیقی لطف و راحت کو دیکھا ہی نہیں، وہ صورت لطف کو لطف سمجھ گیا ہے. اور راز اس کا وہی ہے کہ لطف و راحت اور چیز ہے، اور سامان لطف و راحت اور چیز ہے. جن اسباب دنیا کو لوگ سامان راحت سمجھتے ہیں، اگر حقیقی راحت نہ ہو تو حقیقت میں واللہ وہ عذاب ہے. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا. ان کافروں کا مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، अल्लाह पाक का इरादा यह है कि उनको दुनिया में अजाब दें, दुनियावी अजाब का उसको जरिया बनाएं। बस ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास राहत का सामान है उसको राहत भी हासिल हो, ना ये ज़रूरी है कि जिसके पास राहत का सामान नहीं है उसको राहत ना हो। खुद अल्लाह ताला की आदत यह है कि वो मुसलमान तारीख़ दीन को राहत से महरूम करते हैं, मुसलमान तारीख़ दीन है राहत से महरूम करते हैं। बस दीन का नुकसान ऐसा नुकसान है जिससे दुनिया की राहत भी बर्बाद होती है। जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे बैठे कोई बात फरमाते हैं तो उसको मलफूज कहते हैं, तो उसको उनके मुरीदीन जमा कर लेते थे, तो वो एक मौजू से मुतालिक नहीं रहती बात, वो अलग अलग हो जाती है। कभी कोई बात हो गई उसको लिख लिया, कभी कोई बात हो गई उसको ऐसे लिख दिया। फरमाया कि मियाँ बीवी का फसाद, हस्बैंड एंड वाइफ, मियाँ बीवी का फसाद सब फसादों की मुर्गी है, यानी अंडे इसी से निकलते हैं। मियाँ बीवी का फसाद सब फसादों की मुर्गी है, यानी सैकड़ों फसाद पैदा करती है। फरमाया कि किसी पर तशद्दुद या कता ताल्लुक करने में मफसदे का अंदेशा हो, फसाद का नुकसान का अंदेशा हो, और उसकी तरफ से इजरार का खौफ हो, यानी नुकसान पहुंचाने का खौफ हो, और अपने अंदर उस इजरार को तहम्मुल करने की ताकत न हो, बर्दाश्त न कर सकता हो, उसको अमर बिलमारूफ से खामोशी की इजाज़त है। बाकी जिसको हिम्मत हो उसको खामोश रहने की इजाज़त नहीं। किसी भी मुसलमान को, कोई भी मुसलमान के सामने कोई भी गलती कर रहा हो उस गलती पर खामोश रहने की मुसलमान को इजाज़त नहीं होती। अब इतनी खामोशी की आदत हो गई पूरी उम्मत मुस्लिमा को कि पूरी उम्मत में गुनाह फैल गए और मुसलमान गवारा कर रहे हैं, दीनदार मुसलमान भी गवारा करते हैं। इससे खुदा की मदद ख़त्म हो गई, इससे दुश्मन मुसल्लत हो गया। पूरी दुनिया के मुसलमानों पर दुश्मन के मुसल्लत होने की वजह मुसलमानों का अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी पर खामोशी की आदत है। हत्ता कि अगर आप मस्जिद से बाहर निकले और घर जाते हुए रास्ते में मुसलमान है वो किसी भी गुनाह में मिले तो आपको घर चले वैसे चले जाना जायज़ नहीं होता। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि उम्मत मुसलिमा में अमर बिलमारूफ नहीं अनिल मुनकर की कितनी ज़रूरत है, और पूरी उम्मत को उसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत होती है। ऐसा लगता है ज़ाहरी तौर पर कि सब काम छोड़ के पहले इसमें लग जाना, पूरे एक पहले सेटअप हो जाना, यहाँ से वहाँ तक पूरा मैसअप हुआ है। इतने करोड़ों अरबों होने के बावजूद भी जो है ना रहमत खुदावंद मुतवज्जे नहीं, और अल्लाह पाक ये चाहते हैं कि तुम चल फिर कर लोगों में जाओ और जाके उनमें मारूफात की मेहनत इतनी करो कि जो मारूफात हैं उसके लोग उन वो लोगों के नज़दीक मारूफ बन जाए, जो अल्लाह को पसंद है वो लोगों की पसंद बने, और जो अल्लाह की नापसंद है वो लोगों की नापसंद बने। इतनी मेहनत करना, मर्दों में औरतों में जवानों में, बेतलबों में घुस जाना, बेगरज होके जाना, अपना पैसा लगा के जाना, अपना माल लगा के अपना वक्त लेके जाना, अपनी हैसियत गिरा के जाना, क्योंकि आप कौन है क्या है, जब लोगों में जाओगे तो कौन पहचानता है, आप कोई भी होंगे, आप तुरुम का कितने पैसे वाले हैं कौन समझ में नहीं आता। दीन की जो जिम्मेदारी है मुसलमान पर उसको समझना मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल काम है। दीनी जो जिम्मेदारी है वो समझना बहुत मुश्किल काम है। इस वक्त अल्लाह ताला चाह क्या रहे हैं भाई, एक मुसलमान से क्या क्या चाहते क्या हैं वो, अगर हुजूर हो तो किस काम पे लगाएंगे, हुजूर तशरीफ फरमा हो सामने मुसलमान बैठा हो उसको किस काम पे आप लगाएंगे, वो पहचानने का नाम दीन है, और वो कुरान हदीस में है, लेकिन गौर व फिक्र की आदत नहीं रहती। जो बात चल रही है जिस बात का मुजाकरा होता है ना थोड़ा उधर तवज्जो रहती, आम आदत इंसानों की कैसा उससे जहन उजल हो जाता है। इसी वास्ते आप देखेंगे कि जिस तबके में मुसलमानों के जो बात चल रही होती है थोड़ी थोड़ा बहुत अगर शोर है तो वहाँ पर उतना है। अब आमतौर पर तसव्वुफ के नाम से कोई मजलिस हो रही हो, जिक्र की अहमियत फिक्र की अहमियत थोड़ा सा इधर उधर की बातें ऐसी होती रहती ना, तो आप लोगों को देखेंगे लोगों के हाथों में तस्वीरें पढ़ रहे हैं उतर से हो, जहाँ मदरसा है उलमाए किराम होते हैं, इल्म की फजीलत पर बयान होता रहता है, इल्म की अहमियत पर बयान होता है, उसकी ज़रूरत पर बयान, वहाँ देखेंगे आपके लोग मसले पूछ रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ हो रहा है, आलिम जद का कोर्स चल रहा है, इतना थोड़ा सा चल रहा है। जहाँ देखेंगे कि साहब अमर बिलमारूफ होना चाहिए नहीं अनिल मुनकर होना चाहिए, वहाँ चुन चंद लोगों को देखेंगे आप वहाँ गश्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा सा इधर उधर हरकत करे जैसा करके आ जा रहे हैं। बखिया क्या क्या है और बिल्कुल सोचते नहीं अपन, ये एक बहुत बड़ा काम है जो उम्मत को उस रास्ते पर डालने का है। तो भाई जो 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 जिम्मेदारियां हैं उसको कुरान पाक से निकालो, हदीस मुबारक में से निकालो, बहैसियत मुसलमान होने के मुसलमान जिम्मेदारियों का नाम है, जो जो जिम्मेदारियां हैं वो निकालो कुरान हदीस में से, उस पर चलो। فرمایا کہ اپنے گنہگار بھائیوں سے ملو مگر ان کو سمجھاؤ، یعنی ملنے کا حق بھی ادا کرو تو ملو. جی فرمایا کہ رضا بالکفر کفر ہے، کفر سے راضی رہنا کفر ہے، چاہے اپنے کفر سے یا غیر کے کفر سے. رضا بالکفر کفر ہے چاہے اپنے کفر سے یا غیر کے کفر سے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے لیے تو کفر پسند نہ کرے مگر دوسرے کے کافر ہونے سے راضی ہو تو چاہے دوسرا کافر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو مگر یہ راضی ہونے والا فوراً کافر ہو گیا. فرمایا کہ تجدید ایمان کے لیے صرف دو چار آدمیوں کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زور سے کہہ دینا اور اپنی غلطی پر اظہار ندامت کافی ہے، اور تجدید نکاح میں اعلان عام کی بھی ضرورت نہیں، نہ خطبے کی ضرورت ہے، نہ قاضی کی، نہ پانچ کلموں کی، بلکہ کسی خاص مجلس میں دو آدمیوں کے سامنے ایجاب قبول کر لیا جائے. بعض مرتبہ کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اب مفتی صاحب اعلان کر دیا کہ فراق کا نکاح ٹوٹ گیا. اب یہاں تو ایسے چلتے معاملہ کہ ٹوٹا ہوا ہو یا نہیں ٹوٹا ہوا سب چلتا ہے، بول کے اس کی تجدید ہی نہیں کرتے. مگر اگر ضرورت پڑے گی تجدید نکاح کی تو بولے بس دو آدمیوں کے سامنے ایجاب قبول کرا دینا، اس کا ہو جاتا ہے. ایسے ہی اگر کسی سے ایسی غلطی ہوئی کہ لوگ بولے نہیں تو یہ تجدید ایمان کی ضرورت ہے تو کافر ہو گیا، تو کیا ہے، دو جو لوگ سامنے موجود ہیں ان کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدمی کہہ دے ہوگی بات تجدید ایمان، اور اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار یہ کافی. فرمایا جب تک تاریخ کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے تب تک تو صحبت شیخ ضروری ہے. جب اس کی حقیقت معلوم ہو گئی اور تاریخ سے مناسبت بھی ہو گئی تو پھر صحبت ضروری نہیں رہتی. پڑھتے رہنا چاہیے بزرگوں کی کتابیں اور ان کے ملفوظات جو ہے نا وہ اپنے سرانے رکھ لیا اور ایک دو تین پڑھ کے سو گئے، ساتھ میں لیٹے لیٹے پڑھ لیے، بڑا علم اس سے حاصل ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن بڑے علم کی ہوتی ہیں اور زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ہوتی ہیں، اور اصل علم میں یہی بات ہے کہ وہ زندگی کے سارے پہلوؤں سے متعلق آدمی کے پاس تحقیق ہو. کسی ایک دو بات ٹاپک کے بارے میں آدمی کو خوب بات معلوم ہے تو وہ نہیں محقق تھوڑے ہوتا ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اس کو بات معلوم رہنا، تہ تک اس کی نظر پہنچی ہوئی رہنا. وہ کتاب کا کیا پڑھنا میاں، کدھر گیا؟ جو تربیت کے لیے نہیں آیا بولا نہیں بیٹھتا ایسا ہے، اس کے بولے وضو میں جو ہے نا پانی کم کرو، بولے نہیں میں وہ میں خالی اعتکاف کے لیے آیا، میں تو تربیت کے لیے نہیں آیا. تم مجلس میں کیوں بیٹھ رہا ہوں؟ بولنے والا بھی ایسے ہی ہے، اس کو بھی گھس لینا رہتا ہے، نہیں تربیت کے لیے نہیں بولتا، گھس لینے کے لیے بولتا. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، تو عام طور پر یہ کا نعبدو تو لوگوں کو بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ایاک نستعین میں استعانت کے مفہوم سے عام طور پر غفلت رہتی ہے، تو وہ استعانت کے مفہوم پڑھتے ہیں ایک جگہ سے، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. عبادت استعانت ہے نا، کہاں سے شروع ہو رہا ہوں؟ اگر ڈاکٹر صاحب کا ایک مضمون ہے عبادت اور استعانت بول کے، اس میں پہلے عبادت کی تفصیل ہے تھوڑی سی، جہاں تک ذہن اس وقت نظر پڑ رہی ہے تو شاید یہاں تک ہے. وہ دوسرا ہے نستعین، ایاک نستعین و ایاک نستعین، آپ ہی سے استعانت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ لا فاعل فی الوجود الا اللہ، ما سوى اللہ سے بالکلیہ اعراض کر کے آپ ہی کی طرف بالکلیہ رجوع ہوتے ہیں. ما سوى اللہ جو اللہ کا غیر ہے، ہم آپ کے سوا استعانت کی جہت سے غیر کو کیوں پکاریں جبکہ ہمیں یہ سنا دیا گیا ہے اور ہم نے بھی تجربہ کیا ہے، اس کی توثیق کر لی ہے کہ آپ کے سوا किसी में हौल व कुव्वत नहीं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, इसलिए वो ना हमें नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना ज़रर। इस मदह सना व इकरार उबूदियत सूरह फातिहा में जो या का नाबुद या का नस्ताइन पढ़ते हैं वहाँ पर हैं भी हजरत। इल्तिमास व दुआ अहदिन सिरात मुस्तकीम, हक़ ताला राह मुस्तकीम की हिदायत फरमाइए, नफ्स व हवा से छूटें, आपका खुर्ब नसीब हो। सिरात लदीन अनमत अलैहिम गैरिल मग़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, अहले इनाम की राह पर चलना नसीब हो जो अम्बिया व औलिया की राह है, यही अहले ईमान है। अल्लदीन अनाम अल्लाहु अलैहिम अनाम अल्लाहु मिनन नबियीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन, मग़ूबीन और वालीन की राह नहीं जिन्होंने गैरुल्लाह से इबादत व इस्तेआनत का रिश्ता कायम करके हमेशा के खसारे में अपने को मुब्तला कर लिया। इस हमद सना और इल्तिमास दुआ के साथ वो कलाम रब्बानी की चंद और आयतें अहकाम खुदाबंदी के मालूम करने और तकरार से उनको अपने जहन में जमाने और हर हर्फ की तिलावत पर 10 नेकियाँ कमाने और हक़ तआला से सरगोशी करने पड़ता है और फिर फौरन पेशी में झुक जाता है या अपने रहमान रहीम और आका के पेट में सर दे देता है। इसी तरह अपनी जिल्लत का मज़ीद इजहार करता है, इस हालत में उसकी ज़ुबान से उसके मौला की तकदीस और तंजीह और तहमीद जारी होती है और अपनी बेमायगी फ़ख्र और जिल्लत का एहसास कल्ब में वाज़ेह तौर पर मौजूद होता है। जब सर उठाता है तो हक़ ताला उसी की ज़ुबान में फरमाते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इस तरह उसका मर्तबा बुलंद करते हैं। जो सर माबूद हकीकी के आगे झुकता है वो मखलूक के आगे झुक नहीं सकता, वो सबसे बुलंद होता है, मुमताज़ होता है, बेनियाज होता है, वो एक लाकीमत जौहर होता है। इस सरफराजी के शुक्रिया में वो हक़ ताला की हमद करता है, पैर पकड़ लेता है और इस तरह गायत तजल्लुल का इजहार करता है। ज़ुबान पर आका की अजमत व रफ़त और उलू का इकरार जारी हो जाता है। इस इजहार तजल्लुल में वो अपनी आँख की ठंडक पाता है, जो इलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, और आँख की ठंडक उसको अपने महबूब मौला के मुशाहदे से हो रही है। यही उसका कमाल है और यही उसकी मेराज है। माबूद का न सिर्फ खैर महज होना ज़रूरी है, माबूद का न सिर्फ खैर महज होना ज़रूरी है बल्कि उसका हमातवा या काजिर मुतलक होना भी लाजिम है। ये अपनी लामहदूद कुव्वत और लामुतनाही ताकत की वजह से हमारी हिफाजत करता है। हमारा जो माबूद है वो अपनी लामुतनाही ताकतों की वजह से हमारी हिफाजत करता है और हमारी हाजतों को पूरी करता है और मुरादों को बरलाता है। उसके एहतसाम के बाद हमें उसकी नुसरत व इनायत का कतई यकीन हो जाता है। शर के मसले की तोजीह से आजिज होकर नताइजिया ने खुदा के हमातवा होने का इनकार कर दिया, लेकिन जो खुदा कादिर मुतलक न हो वो माबूद हकीकी कब करार दिया जा सकता है? जो खुद शर पर गालिब न हो हमारी मदद कैसे कर सकता है और हमारा मौला और नसीर कैसे हो सकता है? शर की तोजीह का ये मौका नहीं, शर कहते किसको हैं, खैर शर उसका एक उनवान है बाज़ाब्ता, लेकिन हम अपने माबूद को फ़आल मुतलक और हमातवा मानते हैं। अफ़ाल व आसार का मर्जा उसी को करार देते हैं, हौल व कुव्वत का उसी को मुब्दा समझते हैं, इसलिए उससे इस्तेआनत चाहते हैं, उसके निअमल मौला और निअमल नसीर होने का यकीन रखते हैं। एतसीमु बिल्लाही हुवा मौलाकुम व निअमल मौला व निअमल नसीर, जब कुव्वत सिर्फ उसी को हासिल है, ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, हरकत का भी वही मब्दा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, तो फेल जो हरकत व कुव्वत ही का नतीजा है सिर्फ हक़ ताला ही के लिए साबित है और ज़वात खल्क से उसकी बिल्कुलिया नफ़ी होती है। इस हकीकत के समझते ही उसके बसर व बसीरत से गफलत का पर्दा उठ जाता है और वो ला ततहर्रक ज़र्रतुन इल्ला बिइज़्निल्लाह के माना समझ जाता है। गैरुल्लाह से इस्तेआनत की नस्बत काट कर, अल्लाह के गैर से मदद लेने की नस्बत काट कर, असलम आबदी और इस्तिस्लमा का मजदाक बन जाता है। अपने रब से इस्तेआनत के तरीक़े क्या हैं? बसीरत मुहम्मदिया ने जिन तरीक़ों की तालीम फरमाई है उनमें से बाज़ ये हैं, यह अगर इसको बयान यहाँ से शुरू होता है, जिन तरीक़ों की तालीम फरमाई है उनमें से बाज़ ये हैं। अपनी हाजतों व मुरादों में हक़ ताला से दुआ करो, दुआ का हुक्म है और इजाबत का वादा है, उदऊनी अस्तजीब लकुम। हक़ ताला जूद महज हैं, यानी महज सखावत हैं, अताए महज हैं, उनमें बुखल का शायबा नहीं, हक़ ताला बखील नहीं है, मायूसी व महरूमी उनकी दरगाह में नहीं। तशफ़ी के लिए फरमा रहे लाते यसुमर रहिल्ला, वो हकीम भी हैं, उनका हर फेर हिकमत रखता है, वह हमारे खैर को हमसे बेहतर जानते हैं। अगर वो हमारी किसी दुआ को नहीं कबूल फरमा रहे हैं तो उसे कबूल न फरमाने ही में हमारा फ़ायदा है। इसीलिए कहा गया है मनऊहु अताऊहु, उनका मना करना उनका देना ही है। मर्द का कमाल इसी में है कि उनकी मना को आता जाने। किसी आशिक ने इसी जज्बे के तहत कहा है, अगर मुराद तू ए दोस्त ना मुरादी मास्त, मुराद खेश हो मुराद खेश दिगर बार मन न खाहम खास्त। अगर आपकी मुराद ए दोस्त मेरी नामुरादी है, अगर आपकी मुराद ये है कि मैं नामुराद रहूं, तो फिर मैं अपनी जो मुराद है उसको दोबारा कभी बोलूंगा नहीं अपनी ज़ुबान से कि मुझे ये चीज़ दीजिए। ये बोला अगर मुराद तू ए दोस्त ना मुरादी माँ, आपकी मुराद ये है कि मुझे नामुरादी रहे, तो मुराद खेश दिगर बार मन नखा हम खास, तो अपनी अपनी मुराद को दूसरी मरतबा नहीं बोलूँगा मैं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे कि ला उबाली अला ये हालिन असबह असबह अला मा अकरहु व अला मा उहिब्बु लिअन्नी ला अदरी ला अदरी अलखैरा लिअय्यिहिमा। मुझे इस बात की परवाह नहीं होती कि मैं सुबह किस हालत में करूँ, जिस ऐसी चीज़ में सुबह करूँ जिसको मैं नापसंद करता हूँ, और ऐसी चीज़ में सुबह करूँ जिसको मैं पसंद करता हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है। इसलिए कि खैर दोनों में से किस में है वो मुझे नहीं मालूम है, तो जिसमें मेरे लिए खैर है उसी हालत में अल्लाह मेरे लिए सुबह उसमें कराएंगे। अल्लाह ताला खुद हमें तालीम फरमा रहे हैं और एक बारीक नुक्ते की तरफ तालीम फरमा रहे हैं, असा अन तकरहू शैया व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैया व हुवा शरुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बहुत मरतबा ऐसा होता है कि तुम एक चीज़ को नापसंद करते हो वो तुम्हारे लिए बेहतर होती है, और एक चीज़ को पसंद करते हो और वो तुम्हारे लिए बुरी होती है, और अल्लाह जानते हैं और तुम नहीं जानते हैं। शिबली ने आरिफ की तारीफ ही इस तरह की है, आरिफ ओस्त के मना निजद ओ दोस्त तर अजाता बाशद। आरिफ वो होता है कि रोकना उनके उसके नज़दीक ज़्यादा बेहतर होता है अता से, यहीं से रज़ा का मकाम शुरू हो जाता है जो इस्तेआनत का बुलंद तरीन मकाम है। बहरहाल अगर हक़ सुबहाना हो ताला किसी हिकमत मसलहत से बंदे मोमिन की दुआ कबूल नहीं फरमाते तो उसके कल्ब की हिफाजत फरमा देते हैं, मतलूब की जानिब से ख्याल पलट देते हैं, जो चीज़ उन्हें चाह रहा था उससे दिल हटा देते हैं। मिला तुधिब तलबी इला शही इन सर्रफ तो अन्य एक दुआ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुआ करते थे कि अल्लाह जो चीज़ आपने मेरे लिए नहीं रखी है उधर मेरी तलब भी हटा, उधर से मेरी तलब हटा दीजिए, मत ले जाइए। हिकायत और शिकायत और जजा फजा की तरफ मायल नहीं करते, जिस दुआ को कबूल नहीं करते हैं नहीं करना होता है, अल्लाह तबारक व तआला उस पर यह फजल फरमाते हैं कि बंदे के अंदर से उसकी हिकायत और शिकायत नहीं रखते, रजा के मकाम में पहुँचा देते हैं। निकुल्ली अजल किताब कहकर हफ्ताला से राज़ी हो जाता है। इजाबत दुआ की एक सूरत यह भी होती है, इजाबत मैंने कबूल करना, इजाबत दुआ की एक सूरत यह भी होती है कि मतलूब तो हासिल नहीं होता लेकिन हक़ ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाते बल्कि उसको उसकी किसी बला को दूर कर देते हैं, वो उसको इस बदल का इल्म नहीं होता। एक आखिरी सूरत यह होती है कि मुद्दा अगर दुनिया में नहीं पाता तो आखिरत में उसको आखिरत के लिए उसको ज़खीरा कर दिया जाता है। इन्नल अब्द यरा फी सहाइफिही यौमल क़ियामति हसनात ला यारिफुहा व युक़ालु इन्नहा बदलुन لسؤالك في الدنيا لم يقدر قضاؤه فيها। बेशक बंदा देखेगा अपने सहाइफ में क़ियामत के दिन कुछ ऐसी नेकियाँ जिनको वो जानता नहीं है, उससे कहा जाएगा कि बेशक ये तेरे सवालात हैं दुनिया के, दुनिया में उनका पूरा करना तेरे लिए मुकद्दर नहीं किया गया था, अब उसका बदला ये तुझको दिया जा रहा है। बहरहाल इस इजाबत दुआ का वादा सच्चा है, वो जो ओनी अस्तजीब लकुम ये जो वादा है अल्लाह का वो वादा सच्चा है, लेकिन ये वादा मुतलक नहीं मुकैद है, मुतलक है मुकैद नहीं है कि उसी वक्त उसी सूरत में पूरा कर दिया जाए जिस वक्त और जिस सूरत में बंदे ने दुआ मांगी है। फ़हम अगर आप इस नुक्ते को समझ जाएं तो फिर आपको मालूम हो जाएगा क्यों रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ की तालीम फरमाई थी, अल्लाहुम्मा फ़ीनी कुल्ल मुहिम मिन हैथु शीता वकैफ शीता व अन्ना शीता व मिन ऐना शीता। तो इस्तेआनत का एक तरीक़ा मुरादों में अपनी हाजतों में मुरादों में हक़ ताला से दुआ करना है। استعانت کا دوسرا طریقہ، اللہ سے مدد لینے کا دوسرا طریقہ اپنے کاموں میں حق تعالیٰ پر توکل کرنا ہے، کاموں میں توکل کرنا. اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو، محض علم نہیں یعنی تحقیق ہو، محض تعقل نہیں، یا جدید نفسیاتی اصطلاح میں یوں کہو کہ اگر یہ بات ہمارے تحت شعور میں اتر گئی ہو کہ فاعل حقیقی حق تعالیٰ ہیں، کرنے والے وہ خود ہی ہیں، افعال و آثار کا مرجع وہ خود ہیں، حول و قوت کا مبدا وہ خود ہیں، اور اس کا بھی پھر یقین ہو کہ اس کے بعد وہ رحیم بھی ہیں، وکانا بالمؤمنین رحیما، اور ولی بھی ہیں، واللہ ولی المؤمنین، تو ہم اپنے تمام امور ان کو تفویض کرنے میں خوشی سے آمادہ ہو جائیں گے، اور اس تفویض کے ساتھ ہی فکر سے آزاد ہو جائیں گے، طمانینت و مسرت سے ہمارے قلوب بھر جائیں گے، اور کسی مست محبت کے الفاظ میں کہہ اٹھیں گے، وکلت الی المحبوب امری کلہ فان شاء احیانی وان شاء اتلفا، میں نے اپنے آپ کو اپنے محبوب کے حوالے کر دیا ہے، اور وہ مجھے چاہے تو زندہ رکھے اور چاہے تو وہ مجھے مار ڈالے. توکل کا مطلب ہے اپنے حاج اپنے امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنے آپ کو چھوڑ دینا، اپنے کاموں پر، اپنے کاموں میں حق تعالیٰ پر توکل کرنا. توکل قلبی عمل ہے، دل کا عمل ہے یہ، یعنی قلب میں یقین جاگزی ہو کہ مجھ میں اور کسی شے میں نہ اثر ہے، نہ قوت ہے، نہ حرکت ہے، مجھ میں اور ہر شے میں اثر اور قوت حرکت حق تعالیٰ ہی پیدا کرتے ہیں. وہ جس طرح میرے خالق ہیں، میرے افعال کے بھی خالق ہیں، خلقکم وما تعملون، میرے اقتضاء اور فطریات عین کے مطابق افعال کی تخلیق فرما رہے ہیں. میرا اقتضاء میرا اختیار ہے، لیکن فعل کی تخلیق حق تعالیٰ کی جانب سے ہو رہی ہے، اس لیے اسباب قطعیہ کے استعمال و اختیار کا مجھے حکم ہے، اور حکم کے تحت میں ان کو استعمال کر رہا ہوں. جانتا ہوں کہ اگر مجھے اولاد کی خواہش ہے تو جماع تو ترک نہیں کر سکتا، بھوک کی تشفی کے لیے نوالے کا اٹھانا اور اس کا چبانا اور حلق سے نیچے اتارنا ضروری ہے. توکل ترک عمل اور تعطل کا نام نہیں، علم اور حالت کا نام ہے، قلبی کیفیت کا نام ہے، اس یقین کا نام ہے کہ ہاتھ میں قدرت، حرکت، فعل سب حق تعالیٰ ہی کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی مشیت و ارادے سے پیدا ہوئے ہیں. وہ چاہیں تو نوالا منہ تک نہ پہنچے، ہاتھ شل ہو جائے، کھانا بھی چھن جائے، نظر ان کے فعل پر ہے، فضل پر ہے، اپنے زور بازو پر نہیں اور کسب پر نہیں. توکل ترک اسباب نہیں، ترک رؤیت اسباب ہے، اسباب کو دیکھنا، اسباب پر نظر رکھنا کہ ان اسباب کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا نام ترک. ان مبادیات کو سمجھ جانے کے بعد رزق کے مسئلے پر غور کرو. رزق کا ذمہ دار حق تعالیٰ، رزق کا ذمہ حق تعالیٰ نے لیا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، صرف ذمہ داری پر اکتفا نہیں کیا، قسم بھی کھائی. صرف قسم ہی پر اکتفا نہیں کیا، مثال بھی بیان کی. وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، آسمان میں روزی ہے تمہاری جو تم سے وعدہ، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، سو قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی کہ یہ بات تحقیقی ہے جیسے کہ تم بولتے ہو. حق تعالیٰ ان لوگوں کو بھی رزق دیتے ہیں جو غفلت و معصیت میں مبتلا ہیں، فسق و فجور میں چور ہیں، پھر جو ان کی اطاعت اور رعایت کرتے ہیں وہ کیسے محروم ہو سکتے ہیں. دیکھو جو درخت بوتا ہے وہی سینچتا بھی ہے، خلقت کو وہی مدد دیتا ہے جو ان کا خالق ہے. مخلوق کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان کا خالق ان کو کافی ہے، مخلوق کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ان کا خالق ان کو کافی ہے. الیس اللہ بکافی عبدہ، ایجاد ان سے ہے، دوام امداد بھی انہی سے ہوگی، تخلیق ان سے ہوگی، رزق کا دینا بھی ان کے ذمے ہے. اس کی مثال انسان اپنے نفس میں پاتا ہے، جب کسی کو گھر پر دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے غذا کا انتظام بھی کرتا ہے، جب کسی کو دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے غذا کا انتظام بھی کرتا ہے. حق تعالیٰ نے جب ہمیں اپنی مشیت و ارادے سے پیدا کیا ہے تو رزق کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے. استعانت کا تیسرا طریقہ مصیبتوں میں صبر کرنا ہے. دنیا دار الحزن ہے اور دار المحن ہے اور سجن اور قید خانہ ہے اور غم کی وادی ہے और शैतान की दुकान है। शैतान की दुकान में शर और फसाद के अलावा क्या मिलेगा? अगर किसी दुकान में आप गए और मालूम हो जाए कि ये शैतान की दुकान है तो उसमें आपको क्या खैर मिलेगा? उसमें शर मिलेंगे, राहत मिलेंगे, फसाद मिलेगा। बड़ी बेहतरीन तस्वीरी है इनकी, दुनिया शैतान की दुकान। दुनिया दारुल हुज़्न है, गम की जगह है, और दारुल महन है, मेहनत की जगह है, मशक्क़त की जगह है, और सिजन और क़ैद खाना है, जेल है, और गम की वादी है, और शैतान की दुकान है। दुर्वेश हो कि शाह, अमीर हो कि गदा, सब गम व गम हम में मुब्तला है। हदफ बला में लक़द ख़लक़ना लिंसान फ़ी कबद, क्योंकि हक़ ताला ही हमारी गम से आजमाइश करते हैं, मुसीबत में मुब्तला करते हैं, रुलाते हैं और हंसाते हैं। वानहु वाधा वाबका, मारते और जिलाते हैं। वानहु हु अमात वाहिया, और गनी करते हैं और फ़कीर करते हैं। वानहु अगना वाकना, इसलिए हक़ ताला ही हमें मसाइब से बचने का तरीक़ा बताते हैं, और वो तरीक़ा सब्र है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून, ईमान वालो मौजूदा मसाइब पर सब्र करो, दूसरों के साथ सब्र इस्तक़लाल से काम लो, और ऐसे कामों में साबित कदम रहो जिसका वक्त अभी नहीं आया। राबितु, और अल्लाह से डरो, इसी में तुम्हारी फलाह व बहबूद है। ताला ही के हुक्म पर सिर्फ सब्र करना, और अल्लाह के हुक्म पर सब्र करना। वस्बिर लिहुक्म रब्बिक, और हक़ ताला ही के लिए है। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, सब्र से मसाइब बर्दाश्त करना आसान हो जाता है, गम के बादल छट जाते हैं, फिक्र का बोझ हल्का हो जाता है। अगर असबाब के रास्ते से इंसान मसाइब को दूर करना चाहे और गम से छूटना चाहे और राहत की उम्मीद बांधे, तो सिवाय हसरत के कुछ भी नहीं मिलता। एक ही मौजू से मुतालिक चूँकि थोड़ी सी तफसील है, तो वो मैं इन्हें सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजाहत के वास्ते उन्होंने उस पर कलाम किए। सब्र का अदब यह है कि ज़ुबान को शिकवा और शिकायत से रोका जाए, और सिवाय हक़ ताला के किसी से अपनी मुसीबत का गिला न किया जाए। इन्नमा अश्कु बत्ती व हुज़्नी इलल्लाह, गौर करो मखलूक से शिकायत करने के क्या माना है। यही ना कि एक रहीम व करीम ज़ात का एक गैर रहीम व गैर करीम हस्ती से शिकवा किया जा रहा है। ऐसा शख्स कभी इताअत की हलावत नहीं पाएगा। सब्र की बुनियाद इस पर है कि मुसीबत को छुपाया जाए, लेकिन मुसीबत में या दर्द में ज़ुबान से हाय वाय अगर निकल जाए तो ये सब्र के मुनाफी नहीं है। इस्तेआनत का चौथा तरीक़ा हक़ ताला की नियमतों का शुक्रिया अदा करना है। यह भी मदद लेने का एक तरीक़ा है, तरीक़े इस्तेआनत है, शुक्र। इंसान की ज़िंदगी में गम भी है, खुशी भी है, रंज भी है, राहत भी है, जुल्मत भी है, नूर भी है। बात यह है कि हक़ ताला के असमा जलाली भी हैं और जमाली भी, और हर वक्त मसरूफ़ अमल हैं, एक लहजे के लिए भी मुअत्तल और बेकार नहीं। खैर और शर, रंज और राहत, लज्जत और अलम, नियमत और बला उन्हीं की तजल्लियात का नतीजा है और हकीकी है। इंसान की यह फितरत है कि वह बला से नजात पाता है और नियमत में इजाफा। बसीरत मोहम्मदिया ने दोनों के लिए कल्बी तरीक़े बतलाए हैं। बलाओं में सब्र और नियमतों में शुक्र कल्ब इंसानी में एक अजीम अजीम उशान इनकलाब पैदा करते हैं। अच्छा था कि अगर पूरा सुनाया जाता, लेकिन मौका इसको नहीं है। हक़ ताला से इस्तेआनत के दूसरे तरीक़े इजमालन ये हैं। हमें चाहिए कि गुनाहों के सुदूर पर तौबा करें। अगर आदमी किससे गुनाह सादिर हो गए तो अल्लाह से मदद लेने का तरीक़ा क्या है? तो तौबा करना है। अब अंदाज़ा हो गया आपको कि इस्तेआनत का मतलब क्या होता है। जिन अहवाल से मुतालिक जो अहकाम आए हैं, वो अहकाम अल्लाह की इस्तेआनत के लिए हैं, अल्लाह से इस्तेआनत के लिए हैं। इसीलिए कहते हैं कि आमाल जो है ना, वो असल अल्लाह तबारक व ताला की मदद को खींचने वाले होते हैं। वो आमाल ही दिए गए हैं। जितना ज़्यादा यकसोई पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसकी जो तदाबीर हैं कि दिमाग को एक तरफ करने की, जो आप हजरात को मुराकबे के ज़रिए से बताया जा रहा है, मुराकबे की आदत डालो, उससे मुतालिक ज़रूरी बातें आपके सामने आ रही हैं हमारे साथी की तरफ से। जितनी ज़्यादा उस यकसुई तबीयत के अंदर लाई जाएगी उतनी ज़्यादा तरक्की होगी। अपनी तरक्की का रास्ता असल वो है, अल्लाह तबारक व ताला की तरफ बढ़ने वाले के वास्ते यकसुई ज़रूरी है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब की गई थी, हुब्बिबा इलैहिल खला, तन्हाई आपको महबूब कर दी गई थी। कई महीने जाके आप गारे हिरा में बैठ जाते थे, तो चले जाते, वहाँ रहते, फिर आते, फिर तो चले जाते। कभी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला खुद पहुँचा देती, ज़वातिल आदत, लयालिया ज़वातिल आदत, कई कई रातों तक आप वहीं तन्हाई में रहते थे। हालांकि वहाँ पर ऐसी वैसे बज़ाहिर कोई गड़बड़ नहीं रहती थी, आपकी मशगूलियत में कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर फिर भी मखलूक से कटकर बिल्कुल कैसी फिज़ाए वसीत में चले जाना जहाँ सन्नाटा हो, कुछ ना हो सिवाय अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक़ात के ज़रिए से अल्लाह के मुशाहदे की, मखलूक़ात से अल्लाह तबारक व ताला के आसमां खुलते हैं उनको देखने से। अच्छा ये उनकी खुदियत है, अच्छा अल्लाह ये उनका कमाल है, अच्छा ये ऐसा किया है, अच्छा ये ऐसा किया है, पूरी की पूरी मखलूक़ात जो है ना उनके कमालात का आईना है। हर मखलूक से कमाल को ज़ाहिर किया है, अपने मखलूक में कोई कमाल नहीं है, हर मखलूक से अपने कमाल को ज़ाहिर किया है, अपने इल्म में से अपनी मखलूक को बाहिर किया, यानी उसको ज़ाहिर किया। बाहर किया से मरा कहीं दूर नहीं जाती चीज़, अपने अपने इल्म में से अपने मखलूक को बाहिर किया, फिर मखलूक में से खुद बाहिर हो रहे हैं, ऐसा ऐसा था वो है, वो दौर है, वो खुद को छुपा रहे हैं, मखलूक को मासीवल्ला को दिखा रहे हैं, जो कुछ दिख रहा है वो मासीवल्ला है, लेकिन दिख रहा उनसे चे एक अजीब वो है। इसीलिए वो हमारे तमाम एतबार से सुबहान होने के बावजूद हमारे ही एतबार से जाहिर होते हैं, वहर फोक इबादी हुआ ज़ाहिर की तजल्ली, कल पढ़े थे ना बमिज़दाक हुआ ज़ाहिर, तजल्ली का नाम ही तख्लीक है, वह ज़ाहिर की तजल्ली का नाम तख्लीक है, और ये मालूम के मुताबिक होती है बसूरत मालूम, इल्म में वो शय जिन खसूसियात के साथ, जिन ज़ातियात के साथ, जिन अहवाल के साथ, जिन आसार के साथ, जिन अहकाम के साथ में है, उसी पर अल्लाह तबारक व ताला अपने अस्मा व सिफात की तजल्ली उसके हिसाब से करते हैं, उसी ज़ाहिर होती है। खुद छुप जाते हैं, मखलूक को ज़ाहिर करते हैं, मगर मखलूक में चूंकि ज़ाहिर होने की कोई सिफत नहीं थी तो वो खुद ज़ाहिर होके उसको ज़ाहिर करते हैं, ऐसा है। ज़ुहूर ओ बमन, उनका ज़ुहूर हमसे है, वह वजूद माँ ब ओ, और हमारा वजूद उनसे है, हम मौजूद हैं उनसे हैं, वो ज़ाहिर हमसे हुए हैं, बगैर तजज़ी के, बगैर तकसीम के, बगैर हरकत के, बगैर तगैर के, बगैर तबदल के, किसी किस्म की तब्दीली तगैर नहीं हो अल्लाह पाक के पास। हज़रत शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि जितने ज़्यादा यकसुई पैदा करने की कोशिश की जाएगी उतनी ज़्यादा आलम मिसाल से राबते में सहूलत होगी। आलम मिसाल जो है अपने ऊपर का आलम, उससे ऊपर जो है ना आलम अरवाह है, तब तनज़ुल अल्लाह तबारक व ताला ने अपने अपने कमालात को जो ज़ाहिर फरमाया उस ज़ाहिर को उतरना कहते हैं। तो उसमें तनज़ुल की सूरतें ये हुई हैं कि आलम अरवाह और मलाइक पहले हुआ और उसके बाद आलम मिसाल हुआ और उसके बाद आलम शहादत हुई। तो आलम शहादत से ऊपर आलम मिसाल समझा जाता है, आलम मिसाल से ऊपर आलम अरवाह और आलम मलाइक समझा जाता है। तो हमसे ऊपर जो आलम है आलम मिसाल, उसका हमसे बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आलम मिसाल जो है ना वो दोनों के बीच में है, आलम शहादत और आलम अरवा दोनों से उसका ताल्लुक है, इधर से भी उसका जोड़ है, उधर से भी उसका जोड़ है। उसको अल्लाह ने कुछ ऐसा बनाया है कि चीज़ आती ही उस तरतीब से है, इसलिए दुनिया में आने से पहले हर चीज़ जो है ना वहाँ रहती है, दुनिया में आने से पहले हर चीज़ की मिसाल वहाँ है, कोई भी चीज़ हो, छोटी बड़ी, मुश्किल आसान, सख्त नरम, ठंडी गरम, मुसीबत नियमत, अलबत्ता वहाँ उसकी शक्ल सूरत दूसरी होती है, यहाँ उसकी शक्ल सूरत दूसरी होती है, लेकिन वो उसकी मिसाल होती है। वहाँ उसकी शक्ल सूरत और यहाँ उसकी शक्ल सूरत दूसरी क्यों होती है? जगह मौतन का फर्क है, जगह का फर्क है, खसूसियात का फर्क है, आसार का फर्क है उसी चीज में। तो जो वहां है उसको मुसल असली बोलते हैं, असली असली मिसाल। और आलम शहादत में वो चीज उसका अक्स है, उसका जिल है, आलम मिसाल का जिल है आलम शहादत। आलम मिसाल में असलियत का जो रंग है ना वो यहाँ से बहुत ज्यादा है, चीज की असलियत का जो रंग है वो यहाँ से बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा हकीकी होता है। अच्छा, उसको अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि यहाँ जो काम हम करते हैं ना वो मुसल असली कहलाते हैं, और इसकी जो है ना अक्स आलम मिसाल में पहुँचता है, इसका जिल आलम मिसाल में पहुँचता है, वो मुसल इनकासी कहलाते हैं। मुसल असलिया और मुसल इनकासिया एक लफ्ज़ है इनके पास। मुसल मथल की जमा है, मिसाल की भी जमा कह सकते हैं, मिसल की जमा नहीं होती, इतलाक मिसल पर, मिसल की मिसल पर भी होता है मखलूक़ात के लिए, खालिक के लिए नहीं होता, लैसा कमिथल ही शही, लेकिन मसल के इतलाक होता है, वलहुल मसलुल आला। दोनों में फ़र्क क्या है, एक मिसल कहते हैं मुशाबे बिन नौ को और मसल कहते हैं मुशाबे बिल वस्फ को, वस्फ में मुशाबात, मिसल के माने मुशाबात के होते हैं। तो हम यहाँ जो काम करते हैं ना इस काम का अक्स वहाँ पड़ता है, मगर वो अक्स जो है ना वो अक्स अक्स के जैसा नहीं रहता। वो जैसे जैसे आलम मिसाल की आलम शहादत में जब अक्स पड़ा तो अक्स दिख रहा है क्या आप लोगों को, बल्कि ऐसा मालूम हो रहा कि वो कोई चीज़ है, दूसरी ख्याली चीज़ है, हकीकत तो यही है ऐसा दिख रहा। ऐसे यहाँ जो काम होता है उसका अक्स वहाँ पर होता है, तो ऐसा मालूम होता अपने को कि शायद इसका शेड ही गया वहाँ पर, शेड नहीं जाता बल्कि इससे ज़्यादा असली हालत वहाँ जाहिर होती है उसकी। तो उसको बयान फरमाया है शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने, बीज और उसके दरख्त से, कि हमारे गोया हमारे हमसे जो अमल सादिर हो रहा है वो बीज है और वहाँ वो दरख्त की शक्ल में जाहिर होता है। लेकिन आप देखो कि बीज और दरख्त में किसी किस्म की मुमासरत देखने में नज़र नहीं आती, और कोई देख के कि ये बीज में से ये इतना बड़ा बाग निकल सकता है सोच भी नहीं सकता कोई, क्योंकि जिन चीज़ों के जो बीज होते हैं वो कैसे अजीब गरीब होते हैं और ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं होते, शक्ल सूरत भी कोई ख़ास नहीं होती, रंग भी कोई ख़ास नहीं होता, शेप शुक्ल भी कोई ख़ास नहीं होती, उसको देख के कोई अंदाज़ा ही नहीं कर सकते आप कि इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है, कितना खूबसूरत पौधा छुपा हुआ है इसमें, कितने खूबसूरत फूल छुपे हुए हैं इसमें, और कितना उसका बड़ा होना छुपा हुआ है, कितना छोटा होना छुपा हुआ है। वो हम एक मरतबा छोटे पौधे लेने के लिए गए थे, ये जो लगाते ना पीछे पीछे घरों के तरफ, तो उस पर एक जगह लिखा हुआ था, एक ही पौधा है इतना सा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये 5 फीट तक बढ़ता है, उसके बाजू पे लिखा हुआ था कि ये 55 फीट तक बढ़ता है, दोनों भी एक एक इंच के ही रखे हुए थे। अजीब इंच बीजों की बड़ी अजीब खसूसियात होती है, तजुर्बे से उनको पता चला कि इससे जो निकलता है वो 50 फीट से आगे निकल जाता है और इसका जो है ना 5 फीट पर ही रहता है, खाली मोटा होना उसका, खूबसूरत होना उसका, उसके पत्ते, उसकी उसके फल, उसकी खसूसियात अजीब होते हैं। ये लिखा है शाह साहब ने, शाह इस्माइल शहीद साहब ने, कि अगर लोगों को रोज़ाना इसके इस तमाशे के देखने की आदत ना होती तो कोई यकीन न कर सकता कि इस बीज में से ऐसा बाग निकलता है, आम के बीज में से आम का बाग खड़ा हो सकता है ऐसा, क्योंकि एक बीज से फिर एक ही दरख्त में हज़ारों बीज निकलते हैं, फिर उससे हज़ार, फिर उससे हज़ार, फिर उससे इतना बड़ा बाग बन सकता है एक बीज से कि जो पूरी दुनिया को छा जाए, फूल उसके, पत्ते उसके। तो हमारा जो अमल है वो बीज है और वहाँ दरख्त की शक्ल में निकलेगा, और कौन सा बीज किस तरह के दरख्त को इख्तियार करेगा हमें नहीं मालूम है, और वो दरख्त ही की शक्ल में नहीं, कि बीज बीज होने का मतलब एक ताबीर है, ये एक खुलासा है, और वो उसकी तफसील डिटेल वहाँ होंगी, हर चीज़ दरख्त की शक्ल में नहीं आएंगी वहाँ पे। आखिरत दार आखिरत का मादा वही है, आलम मिसाल जो है ना दार आखिरत का मादा है, मगर उसमें और ज़्यादा बहुत तरक्की होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहला भेजा ना कि जन्नत की ज़मीन क्या है, क़ियान है, चटी चटियल है, भी तो साफ है, वहाँ जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता है उसके पौधे उसके दरख्त लगते रहते हैं, इसीलिए वहाँ जो दरख्त लगेगा वो बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े होंगे कि 100 साल तक अगर कोई घोड़े वाला उसके नीचे से जाए तो उसका साया खत्म नहीं होगा। उसके फल ऐसे होंगे कि जो फल आदमी अगर यानी कभी खत्म नहीं होंगे, और फल आदमी तोड़ेगा तो दूसरा वहां लग जाएगा, खत्म होने का कोई वो नहीं है वहां। वो फल ऐसे होंगे कि एक मजा एक फल में नहीं होगा, 50-50 मजे उसमें होंगे, देखने में मुशाबे होगा, हकीकत बिल्कुल खिलाफ में होगी। अरे ये तो उतु भी है मुतशाबे, अरे ये तो अपन देखे थे वहां पे, खोल के देखे तो क्या दुनिया ही नहीं है, कोई फल तोड़ रहे हैं तो उसमें से हूर निकल के आ जा रही, ये भी होगा, फलों के अंदर हूरें होंगी, ये भी है रिवायतों में, फल तोड़ रहे हैं हूर निकल के आ गई, जो चीज जहां की है वहां पे वैसा रहता है, यहाँ पे फल तोड़ते हैं तो कीड़ा निकलता है, फल तोड़ते हैं तो कीड़े निकलते हैं ना, वो यहाँ के हो रहा है, इसमें बताया गया है कि यहाँ की हूर की हकीकत ये है, एक फल ऐसा होता है कि उसको तोड़ने से उसके अंदर से बेशुमार पतंगे उड़ते हैं, शायद आप लोगों को तजुर्बा ना हुआ, हमको हुआ है, बरगद जो है ना, बड़ का दर जो होता है उसको जो फल लगता है गुल्लर के वैसा रहता है, खाते भी हैं उसको, हम लोग भी खाए हैं, गुल्लर के वैसे रहता है, शबाहत भी वैसे रहती है, अंजीर की वैसी शबाहत रहती है, गुल्लर की शबाहत अंजीर की वैसी होती है, और पता नहीं उसके अंदर वो कैसे पैदा हो जाते हैं, जब हम उसको तोड़ो फुटफुर फुटफुर पतंगे उड़ना शुरू हो जाते हैं उसमें, जिंदे पतंगे अब उनको पर होते हैं, ऐसा आपने खोला और वो उसमें से उड़ना शुरू हो जाते हैं, खुद हमने देखे हैं ऐसे बहुत 50 मरतबा देखे हैं, अल्लाह की शान। तो यकसुई पैदा करने से उस आलम से मुनासिबत होती है, मुनासिबत में मदद मिलती है, इतनी मदद मिलती है कि उस आलम में जाना आना भी आसान हो जाता है, ये लिखा है, अल्लाह हम सबको नसीब कर दे, अगर से कि वो मतालब मतलूबात में से नहीं है लेकिन अगर मिल गया तो मजा तो आता ना थोड़ा, उसके फायदे भी हैं थोड़े, उसके फायदे ये रहेंगे कि वहाँ के जो अहवाल हैं उनका मुशाहदा होने से हमारे अपने दुनियावी हालत का अंदाज़ा हो जाएगा कि हम सीधे रास्ते पर हैं क्या नहीं हैं, और ये भी होता है कि हमारा लेवल क्या है, और ये भी है कि कुछ हवा वहाँ के अहवाल से मुनासिबत जो हमको हो रही है, तो जाहिर है कि जब वहाँ के अहवाल से मुनासिबत होती है तो अमाल की जो अंजाम है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, तो ये बड़ी अहमियत की चीज़ है यकसुई। खैर ये तो एक छोटा सा फायदा है, छोटे से छोटा फायदा है, बिल्कुल यकसुई पैदा करने के नतीजे क्या क्या हो सकते हैं, असल यकसुई पैदा करने से मकसूद है कि अलाइक का कता हो जाना दिल से और अल्लाह तबारक व तआला का जम जाना दिल में, एक ऐसी कैफियत का रासिख हो जाना जिसमें सूरत भी नहीं रहती लेकिन सूरत भी रहती, जब अल्लाह तबारक व तआला जमते हैं जहन में तो चूंकि अल्लाह तआला की कोई सूरत तो नहीं है ना, मगर जहन जब जमाएगा किसी चीज़ को तो वो किसी न किसी खास शेप को इख्तियार करेगा, जो नूर हक की तरफ तवज्जो होगी, नूर मुतलक की तरफ तवज्जो होगी, वजूद हकीकी की तरफ तवज्जो होगी, जो दिल के अंदर बैठेगी तो उसमें जो है ना आदमी का वहम और आदमी का ख्याल कुछ गिलाफ चढ़ा लेता है, उस पर कुछ लिबास पहना लेता है उसको, तो मकसूद ये है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो खींचे नहीं अपनी तरफ, और इसी वजह से ज़्यादा चीज़ों को देखने की भी आदत नहीं रहना शुरू में मशक के दौरान बोलते, इसी वजह से तन्हाइयों में बैठ जाने की तरकीब दी जाती है शुरू में इलाज के वास्ते, कि जितना ज़्यादा आदमी देखता है उतना ज़्यादा तवज्जो बढ़ती है, जितनी चीज़ों को देखेगा उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, जितनी खूबसूरत चीज़ों को, जितनी डेकोरेटेड चीज़ों को, जितनी चमक दमक की चीज़ों को, इतनी खूबसूरत चीज़ों को या बदसूरत चीज़ों को, और इसी वजह से चीज़ों की तरफ लपक जो है ना, इसी का नाम हिर्स है, चीज़ों की तरफ लपक इसी का नाम हिर्स है, ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए ये मिल जाए, और ये अल्लाह को पसंद नहीं है, लपक पैदा की गई है अल्लाह के लिए, और गुस्सा पैदा किया गया है अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ पर झिंझलाहट के लिए, अल्लाह से दूर करने वाली चीज़ जब अपनी तरफ आए तो उसको दफ़ा करने के वास्ते है, वो असल हम एक चीज़ है एक काम के लिए इस्तेमाल कभी नहीं होती ज़िंदगी भर उसके लिए, वो दूसरे कामों के लिए होती, जिसके लिए गुस्सा है वो कभी इस्तेमाल होता ही नहीं, और जिसके लिए ख्वाहिश है वो कभी इस्तेमाल होती नहीं, गुस्सा अल्लाह की मुखालफत से बचने के लिए है, मुखालिफत की तरफ जो चीज़ लाए उसके ऊपर गुस्सा करने का है, और इसलिए गुस्सा करने की चीज़ अपनी ज़ाती है असल पहले, क्योंकि अपनी ज़ाती का मुखालिफत की तरफ जाती है, अपना नफ्स ही है, नफ्स ही मुखालिफत की तरफ जाता है, अपने जज्बात अपनी ख्वाहिशात। तसव्वुफ़ में गैर तसव्वुफ़ में एक फ़र्क यह है कि गैर तसव्वुफ़ में हर वक्त ख्वाहिश और जज्बा पूरा करने की धुन रहती है, जो ख्वाहिश हो रही वो पूरी हो जाए, जो जज्बा हो रहा है वो पूरा हो जाए। अब की छुट्टी में क्या करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, अब की फुर्सत मिल रही क्या करेंगे, ये करेंगे ये करेंगे करेंगे, पिकनिक के तरीके, तफरी के तरीके, खाने पीने के तरीके, कौन सा बारबेक्यू बनाएंगे, कौन सा करेंगे, क्या करेंगे। मासीवल्लाह की खसूसियत यही है, ख्वाहिश सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल की, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किस अंदाज में क्या काम किया जाए जिससे अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाएंगे, शायद इससे खुश हो, शायद इससे खुश हो, शायद शायद इससे खुश हो, शायद इससे, छोटी से छोटी चीज़ से भी खुश हो जाते हैं, मखलूक की खिदमत से खुश हो जाते हैं, बीमार की मिजाज पुरसी से खुश हो जाते हैं, जनाजे के साथ चलने से खुश हो जाते हैं, जनाजे को दफना देने से खुश हो जाते हैं, किसी किसी को खुश कर देने से खुश हो जाते हैं, किसी रोते हुए को हंसा देने से खुश हो जाते हैं। किसी डूबते हुए को बचाने से खुश हो जाते हैं, किसी मासियत में मुब्तला को तौबा करा देने से खुश हो जाते हैं। ये धुन का नाम है सर, ख्वाहिश इसके लिए है, जज्बात इसके लिए है। जज्बा जज्बे में होता है कि कोई बड़ा काम करूं, कोई ऐसी चीज हो जाए कि एक निशान इम्तियाज बन जाए, उनके पास खास में इम्तियाज मिलेगा, अरे ये है शाबाश, पीठ ठोकने वाली जो चीज़ होती है ना, भाई ये बंदा काम करके आया। कोई सहाबे किराम वैसे शौक में रहते थे, और ये अल्लाह जो है ना वैसे शौक में होते थे कि कोई ऐसा काम हो जो अल्लाह ताला के यहाँ नुमाया हो। बड़े बड़े काम हुए, फिर अल्लाह ताला ने बड़े बड़े काम लिए, बड़ी कुर्बानियाँ ली, बड़ी तारीख रकम की उन्होंने, ऐसे ऐसे काम हुए कि तारीख रकम हो गई। एक मौके पर किला फतह नहीं हो रहा था, साहब किराम की फौज ने घेरा डाल दिया था, और दुश्मन को अंदाजा हो गया था कि हमको घेर लिया जाएगा, तो बहुत सारा सामान उन्होंने किले में रख लिया था। एक दिन दो दिन हफ्ते दो हफ्ते नहीं बल्कि महीने गुजर गए, किला फतह नहीं हो रहा, और जो लोग घेरे हुए हैं उनको भी तो तंगी पेश आ जाती ना, फिर खाने की पीने की रहने की सहने की चीज़ों की, तो खुद इनको परेशानी शुरू हो गई। वो अल्लाह अंदर वाले मज़े में है, जमा बहुत कर लिए, खोल भी नहीं रहे, और किला बहुत मजबूत है, खोल भी नहीं रहा, किसी तदबीर से काम नहीं, ऊपर कोई करीब जाने को गए तो ऊपर से तीरा बरसा रहे, परेशानी परेशानी। एक सहाबी सोचते रहे सोचते रहे, जो अमीर लश्कर थे उनके भाई थे, कुछ करना चाहिए इसके लिए। एक ग्रुप तैयार किया उन्होंने अपना, उन्होंने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, क्या करेंगे आप, तुम्हें करता हूँ, तुम लोग तैयार है ना, मैं किले का दरवाजा खोल देता हूँ, तुम लोग घुस जाना। किले का दरवाजा खोलना कोई मामूली बात, किधर से जाएंगे आप खोलने के, तो बोले मैं किले के दरवाजे पर बाहर से चढ़ जाता हूँ, किले की दीवार से, बाहर से किले की दीवार पे चढ़ूंगा, फिर वहां से नीचे कूदूंगा, फिर वहां से दरवाजा खोल दूंगा। कितनी बड़ी सोच है, कितनी दूर की सोच है। अरे मियाँ तुम चढ़ना शुरू करोगे तो वहां से तीर बरसना शुरू हो जाएंगे, एक दो नहीं बेहिसाब तीर आ जाएंगे, तो तुमको तो चढ़ने से पहले मार डालेंगे, देखो तुम मैं कैसे करता हूँ काम। फिर दीवार किले की कोई छोटी तो होती नहीं, बड़ी दीवार है, फिर उस पर से उतरना, किले की दीवार ऊंची होती है बहुत, दुश्मन से हिफाजत के वास्ते, फिर वहां से दरवाजे तक जाना, फिर दरवाजा कोई आसानी से खोलने वाली चीज थोड़ी होती है, किले का दरवाजा बहुत बड़े बड़े होते, उस वक्त तक हम ही बैठेंगे अंदर वाले, अच्छा खोल देंगे तो फिर हम अचानक घुसेंगे तो तुम कहाँ जाओगे, वो सब सोच लिए उन्होंने। क्या क्या हो सकता है मेरे बारे में। तो भाई से जाके अपनी प्लानिंग सुनाई, तो भाई ने कहा कि तुम्हारा मरना तो यकीन ही है। तो कहने लगे मैं, मेरे को मालूम है ये चीज, 1% भी मेरे बचने के चांस नहीं है, मैं तैयार हूं। तो बोले जब दरवाजे में तुम अगर खोल भी दिया तुमने, उस पर कुदरत भी हो गई, तो फिर तुम्हारा हशर कैसा घुसेंगे हम। तो बोले तुम इसकी परवाह मत करना, तुम घुस जाओ, क्योंकि मेरा तो मरना यकीन ही है ना, कुछ भी हो जान दो मेरा। बस जनाब वाला, जहनी तौर पर लोगों को तैयार किया, लोग तैयार थे और दीवार पर चढ़ना शुरू हो गए। वो चढ़ते वो लोग देख लिए, दुश्मन देख लिए, उसने तीर बरसाना शुरू कर दिया। ये उन्हीं तीरों के लगते हुए होने की हालत में दीवार पे चढ़ के कूद गए, और दीवार पे चढ़ के कूदते हुए भी उनको कई मार लगे, और कूदने में खुद मार लगे। और ऐसे जुरत वाले लोग थे कि सब उसी हाथ पैर के टूटे हुए होने की हालत में, जाहिर है कि कहाँ हाथ पैर सलामत रहे होंगे, उसी में दरवाजा खोल लिया, और फिर उसी में साहब किराम घुस गए। और जब घुस गए तो साहब किराम के घोड़ों में उनके उनका जिस्म आ गया। मुसलमानों को अल्लाह ने फतह दे दी। लेकिन अमीर साहब के जो भाई थे, ये जिनके साथ ये वाकया पेश आया, गालिबन उनका नाम मालिक था, तो अमीर साहब ने अपने भाई को तलाश किया तो छोटे छोटे बोटियां मिले। घोड़ों के रौंदने की वजह से उनका जिस्म कहीं से किसी जगह पे सालिम नहीं था। वो जमा करके उसको दफन किया। पहले से मालूम है कि ये सूरत हाल होने वाली है, किसी कारनामे हो गया, उनको मालूम है क्या होने वाला है। बाजी लगा दी, इस्लाम का नाम रोशन कर दिया। अगर जिंदगी दुनिया रही ना, तो इससे बड़ा कारनामा नहीं आएगा सामने। दुनिया देखेगी, जब बोलने का मौका मिलता है, जब सामने आने का मौका मिलता है ना कारनामों के, तो जब आते हैं वो फतावा इब्ने तैमिया कितने 100 साल के बाद में आप छप के आए, लिख के चले गए थे, उन्होंने कोई पूछने वाला नहीं था, उसको कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसके साथ वो उनकी वाली हुकूमत आई, उनके वाले लोग आए, फिर उन्होंने उनको छापा वो सामने। इतने बड़े कारनामे हुए हैं इस वाकई में, नाकाबिले बयान, सोच नहीं सकता इंसान। अगर साहब किराम तक की रिपोर्ट पहुंचे तो वो रश्क में आ जाए। ऐसे वाकयात हुए हैं, हजरत साहबा को रश्क में डाल देने वाले वाकयात हुए हैं, बड़े बड़े कारनामे हुए, इखलास के साथ हुए, बेशर सामानी में हुए। तो ये चीज़ है असल में, यकसुई पैदा करने में अल्लाह तबारक व ताला को राज़ी करने की तदबीरें आदमी सोचने लगता है, और उनको उनको खुश करने के वास्ते, क्योंकि कल क़ियामत में जो है ना, ये चीज़ें सब लाई जाएंगी। उसूल आला जो है ना, जब ये इसकी मिसालें वहाँ इसकी हकीकत खुलेगी, इन अमाल की हकीकतें लाई जाएंगी, तो वो इस शेप और शक्ल में होंगी कि लोग परेशान हो जाएंगे देख के। ये अमल जो है ना, इस अमल को जब हकीकत का रूप दिया जाएगा आलम मिसाल में, तो आप अंदाज़ा करो क्या दिया जाएगा। जब हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, और उनके नाक काटे गए, कान काटे गए, उनकी नाक काटी गई, कान काटे गए, आँख फोड़ी गई, होठ काटे गए, मुसला किया गया उनका, उनका सीना चीर दिया गया, उसमें से जिगर निकाल लिया गया, कलेजा निकाल लिया गया, बेहरमती की गई उसकी, और फ़ख्र किया गया उस पर, चूँकि हज़रत हमजा बहादुर थे और हुजूर के खासुल खास आदमी थे, हुजूर के बाप की जगह पर थे, वालिद साहब तो पहले ही चले गए थे, अब चिया तो अबू तालिब थे, तो मुसलमान हो जाने वालों में से उस वक्त तक हज़रत हमजा थे, हज़रत अब्बास अभी मुसलमान नहीं हुए थे जब तक, अभी हुजूर के बहुत चहेते चचा थे, लेकिन सबसे अब हज़रत अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, बच्चे कौन थे, हमजा ही बचे हुए थे, तो बिल्कुल बाप की जगह पर थे, और बहुत मोहब्बत भी थी हमदा को भी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। लेकिन दुश्मन को मौका मिल गया, उसने कर दिया काम, न सिर्फ काम किया, तो अब हुजूर को तकलीफ़ पहुंचाने के वास्ते और अपना गुस्सा ठंडा करने के वास्ते इनकी लाश के साथ बेहरमती की गई है, उनके साथ ये सब किया गया। देखने के अतबार से ऐसा हुआ ना ये, लेकिन अपनी हकीकत के अतबार से ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है, कि जब कल क़ियामत में मैदान हशर में जब ये इसकी जो ये जो बीज है ना, इस बीज का जो दरख्त सामने आएगा वो नाकाबिले तसव्वुर है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर सफिया, फूफी, फूफी जान की, हजरत हमजा की बहन, अगर इनके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, बल्कि मुझे अंदाज़ा ना होता, बर्दाश्त नहीं करेंगी वो, अगर उनके काबिल बर्दाश्त होने की चीज़ होती तो मैं हमजा को दफन ही ना करता और उनको इसी हालत में छोड़ने को बोल देता, ताकि जंगल से दरिंदे आएँ और इनका गोश्त नोच के खाएँ, और चीले और गिद्ध आएँ और इनका गोश्त नोच के चले जाएँ, ताकि ये जो इस हालत में है ना, ये भी नहीं रहना। ये जिस हालत में इस वक्त ये हैं, और हुजूर उस वक्त बहुत भर्राए हुए थे और जाहिर है कि रो रहे थे और तकलीफ सदमे से चूर थे, इतना इसका सदमा हुजूर को बहुत दिनों तक रहा, बहुत अरसे तक रहा, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल थी। तो उसी जज्बे में हुजूर ने फरमाया कि अगर सफिया के लिए नाकाबिल बर्दाश्त ना होता तो मैं हमजा को दफन करने को नहीं देता और उनको छोड़ देता इस हालत में कि दरिंदे खा लें और जो है ना चीले चीले जो है ना नोच के चली जाएं, ताकि जब मैं अल्लाह के पास पहुंचूं तो फिर ये दिखा सकूं कि ये आपके लिए लाए हैं तौबात। आलम अव्वलीन और आखरीन देखेंगे कि हुजूर के लिए, अल्लाह के लिए कारनामा किया गया कि, चूंकि जो आदमी जिस हालत में जाएगा इस दुनिया से, उसी हालत में उठेगा। अरे भाई, हुजूर के चचा सैयदुल शुहदा हैं और इस हालत में अल्लाह के सामने आ रहे हैं, तो अंदाज़ा करोगे अल्लाह तबारक व तआला का क्या हाल, उस वक्त क्या फरमाएंगे, कैसे फैसले फरमाएंगे और दुनिया किस तरह रंग में इसको देखेगी। अव्वलीन और आखरीन जमा होंगे, उसका फल किस हालत में ज़ाहिर किया जाएगा, उसका दरख्त किस हालत में ज़ाहिर किया जाएगा, उसका रिजल्ट किस हालत में आएगा, कैसी जन्नतें उसके साथ हैं, कैसी खुशियाँ उसके साथ में हैं, कैसा एजाज़ इकराम उसके साथ में है, कितने जो है ना तमगे दिए जाएंगे उस पर, जैसे यहाँ तमगे दिए जाते हैं ना कारनामों के ऊपर, प्राइज दिए जाते हैं, ऐसा होता है। यकसुई जितनी पैदा की जाती है ना, उस यकसुई के एतबार से ये जज्बात हैं जो महज अल्लाह के लिए बनते हैं। इसलिए क्या है, बहुत एहतमाम से यकसुई को पैदा करना है, और वो किसे होती है, जहन को अपने एक तरफ करने से और ताल्लुकात को कम करने से होता है। इसे जितने ज़्यादा ताल्लुकात कम हैं, वो कोई बुराई नहीं है, अरे हमारा बच्चा किसी से मिल रहा नहीं, किसी से अंदर बस अपनी में रहता है मगर नजर नहीं, तो बहुत अच्छी बात है भाई। उसमें जो ख़राब बात है वो ये है कि उन्हें लोगों से तो नहीं मिल रहा लेकिन किसी से मिल रहा है, दिमाग उसके किसी और तरफ है, वो बुरी बात है उसमें। यानी यकसु दिख रहा उन्हें है नहीं यकसु, वो ख़राब बात है उसमें। बाकी लोगों से मिलना कम, बात कम करना, जाना नहीं लोगों में, अपने में आप रहना, काम में लगे हुए रहना, ये बहुत पसंदीदा अमल। दरी जमाना रफीक़े के खाली खललस्त, सुराही मैनाब व सफ़ीने गज़लस्त। इस ज़माने में वो दोस्त जो खलल से खाली है, वो एक अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत है और दूसरे अल्लाह ताला के करीब करने वाली किताबें हैं। दरी जमाना रफीक़े के खाली खललस्त, सुराही मैनाब। सुराही मैनाब कहते हैं कच्चे शराब की सुराही। कच्चे शराब अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को शराब कहते हैं, क्योंकि शराब में जैसे नशा है, अल्लाह की मोहब्बत में वैसे ही नशा है, और मोहब्बत में नशा होता है, चाहे वो किसी का बातिल का हो या हक का हो, मोहब्बत में एक नशा होता है। अब अल्लाह की मोहब्बत में तो अल्लाह का नशा है, तो उसी को कह रहे हैं सुराही मैनाब सफ़ीने गज़लत। हाफिज़ शिराज़ी का है, दीवान हाफिज़ जो है ना, हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह अलैह भी बड़े उशाक में से गुजरे हैं। थानवी रहमतुल्लाह फरमाया कि हाफिज़ का दीवान तो आग है, बस आग भरी हुई है इसमें, बोलते। तो एहतिकाफ़ से ये सबक मिलता है कि एहतिकाफ़ के अलावा भी इसका एहतमाम रहे यकसुई में बैठने का, मराकबे करने का। इसलिए रोज़ाना थोड़ी देर मराकबे की आदत डालना है, क्योंकि वो उसका आइडिया नहीं होता कैसा करना, तो जो लोग करे हुए हैं उनसे सीख लेना, हो जिनको मौका मिल गया किसी तरीके से, एक रास्ता पकड़ लिए, अल्लाह ने तौफीक दे दी, अल्लाह ने फजल फरमा दिया, उनको आइडिया हो गया, भाई उनसे फ़ायदा उठा लो, उसमें छोटे बड़े की क्या बात है, अल्लाह ताला की आता में छोटे बड़े की क्या बात है। जिक्र, फिक्र, शौक़, मोहब्बत अपनी दुनिया में करने के काम हैं सारे, ये दूसरों से नहीं है ताल्लुक उनका, कि आप अपनी दुनिया में कैसे हैं, तन्हाई में कैसे हैं, रातों में कैसे हैं, 3:30 हो गए रोज़ के हिसाब से। اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک.